भागवत सार की श्रृंखला में तीसरा स्कंद के 27वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान। पहले श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। श्री भगवान उवाच। प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतेर्गुणैः अविकाराद् कर्तृत्वान् निर्गुणत्वाद् जलाकृवत्। प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्राकृते गुणे अविकाराद कर्तत्वं निर्गुणात्वाद् जलाकृवत्। प्रकृतिस्थोपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतेर्गुणैः अविकाराद् कर्तृत्वान् निर्गुणत्वाद् जलाकृवत्। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। अविकाराद् कर्तृत्वान् निर्गुणत्वाद् जलाकृवत्। माताजी, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, प्रकृतिस्थ भौतिक शरीर में वास करते अपि यद्यपि पुरुषः जीवात्मा न नहीं अज्यते प्रभावित होता है प्राकृतैः प्रकृति के गुणैः गुणों से अविकारात् बिना परिवर्तन आए निर्विकार अकृतत्वात् कर्तृत्व से स्वतंत्र निर्गुणत्वात् प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहने से जल जल पर अर्कवत् सूर्य के समान। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। भगवान कपिल ने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले प्रतिबिंब से भिन्न रह आता है, उसी तरह जीवात्मा शरीर में स्थित होकर भी प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार का इंद्रिय तुष्टि का कर्म नहीं करता। तात्पर्य, पिछले अध्याय में भगवान कपिल ने यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र भक्ति प्रारंभ करके मनुष्य विरक्ति प्राप्त कर सकता है तथा आत्मतत्व को समझने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यहाँ उसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। जो मनुष्य प्रकृति के गुणों से विरक्त रहता है वह जल से प्रतिबिंबित सूर्य के समान है। जब जल पर सूर्य प्रतिबिंबित होता है तो जल की गति या उसकी शीतलता या अस्थिरता का सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, जब मनुष्य भक्ति कार्यों या भक्ति योग में पूरी तरह लग जाता है तो वह उसी तरह हो जाता है जैसे जल पर प्रतिबिंबित सूर्य। यद्यपि भक्त भौतिक जगत में रहता प्रतीत होता है किंतु वास्तव में वह दिव्य ज्ञान में होता है, दिव्य जगत में होता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जल पर प्रतीत होता है किंतु सूर्य जल से लाखों मील दूर होता है, उसी प्रकार भक्ति योग में लगा मनुष्य निर्गुण होता है अर्थात प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। अविकार का अर्थ है परिवर्तन रहित। भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश है, अतः उसकी शाश्वत स्थिति यह है कि वे परमेश्वर के संग जुड़े या उनकी शक्ति का दास बने, यही उसकी अपरिवर्तनीय स्थिति है। जो ही वह अपनी शक्ति तथा कार्यों को इंद्रिय तृप्ति में लगाता है कि उसकी स्थिति बदल जाती है और यह बदली हुई स्थिति विकार कहलाती है। इसी प्रकार जब वह गुरु के निर्देशन में भक्ति करता है तो उसकी स्थिति बदलती नहीं, क्योंकि यह तो उसका प्राकृतिक कर्तव्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, मुक्ति का अर्थ है मूल स्थिति में पुनः स्थापना। मूल स्थिति तो भगवान की भक्ति करना, भक्ति योगेना भक्त्या है। जब मनुष्य भौतिक आकर्षण से विरक्त हो जाता है और भक्ति में पूरी तरह लग जाता है तो यह अपरिवर्तनशीलता है। अकर्तत्वात् का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी न करना। जब मनुष्य अपने बूते पर कोई काम करता है तो उसमें स्वामित्व की भावना रहती है और इसीलिए प्रतिक्रिया होती है, किंतु जब वह कृष्ण के लिए सब कुछ करता है तो कर्मों के ऊपर उसका कोई कर्तृत्व नहीं रहता। अपरिवर्तनशील तथा कर्म के कर्तृत्व का अधिकार न मांगने से वह तुरंत दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है, जहां उसे प्रकृति के गुण छू तक नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य का प्रतिबिंब जल द्वारा अप्रभावित रहता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे और फिर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सर्वशास्त्राभिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाद्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरु मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णारुत्कंठयोऽसुरा। हरे कृष्ण। अब इन अध्यायों में भक्ति का वर्णन प्रारंभ हो रहा है और अंतिम अध्याय तक कैसे अलग अलग प्रकार की भक्ति, क्या भाव होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग अब इस 27वें अध्याय से प्रारंभ हो रहा है। भगवान कपिल इसको कहने जा रहे हैं। तो इस अध्याय में जैसे हम लोगों ने तात्पर्य में पढ़ा, शुरुआत ही करते हैं कि कैसे जीव दरअसल प्रभावित नहीं होता। जीव शुद्ध है, भौतिक चीजों से उसको कोई प्रभाव नहीं होता है। और बहुत सुंदर उदाहरण सूर्य का दिया कि सूर्य का प्रतिबिंब जब जल पर पड़ता है, जल हिलता है तो सूर्य हिलता हुआ प्रतीत होता है, जल में थोड़ी गंदगी हो जाए तो सूर्य में गंदगी दिखाई देती है, लेकिन दरअसल सूर्य प्रभावित नहीं है क्योंकि सूर्य तो लाखों मील दूर है। यहां की गंदगी पानी के हिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता सूर्य को। इसी प्रकार आत्मा शुद्ध अवस्था में वो केवल यहां इस जगत में प्रतिबिंब मात्र है, अर्थात प्रतीत हो रहा है कि वो आत्मा कष्ट पा रही है या आत्मा कर्म कर रही है इत्यादि, लेकिन सही दृष्टि में आत्मा का भौतिक जगत से, भौतिक पदार्थों से कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा आध्यात्मिक स्थिति में है, आध्यात्मिक अवस्था में स्थित है, इसीलिए उसको कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि हम सबको प्रभाव होता है, तो क्योंकि हम मानते हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हुए शरीर के साथ अपनी पहचान बनाते हैं और इसीलिए हम लोग कष्ट भोगते हैं। तो पहले 5 श्लोकों में यही वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि जीव को मुक्त होने की आवश्यकता है। यहां रहकर ये जो हम लोग प्रभावित हो रहे हैं भौतिक गुणों से, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि मुक्तिर हित्वन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है कि अपनी अवस्था में, मूल अवस्था में स्थित होना। तो इसका वर्णन वो इन श्लोकों में करते हैं और उसके बाद 6 श्लोक से लेकर और 11 श्लोक तक अब उन्होंने भक्ति का वर्णन किया। जैसे प्रभुपाद कह रहे शुरुआत किया तो भक्त कौन है उसका वर्णन करते हैं। तो करीब 18 गुणों को देते हैं वो भक्त के। बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि भले ही हम सबको ये लगे कि भक्ति अभी बहुत दूर है, कृष्ण बहुत दूर हैं, ये बहुत एक जगत पदार्थ रचना समझ में नहीं आता, लेकिन इन गुणों को हम समझ सकते हैं। तो भगवान कपिल स्वयं दे रहे हैं कि भक्त में ये गुण होने चाहिए, ये भक्त के लक्षण हैं। तो क्योंकि उन्होंने भक्ति का वर्णन किया कि भक्ति करनी चाहिए, तो पूरे अध्याय में अब वो भगवान के भक्तों के गुणों का लक्षण देंगे, गुणों को देंगे, फिर उसके बाद कैसे वो परमात्मा को देखते हैं उसको देंगे, और उसके बाद माता देवहूति फिर प्रश्न करेंगी कि ये जो आप मुक्ति की बात कर रहे हैं तो बड़ी दुर्लभ होनी चाहिए, कैसे प्राप्त हो सकती है, इतनी सरलता से तो नहीं होगी। तो भगवान फिर तीव्र भक्ति का वर्णन करते हैं। तो ऐसे ये पूरा अध्याय बटा हुआ है। तो अब छठे श्लोक से वर्णन करना प्रारंभ करते हैं कि भक्त के क्या गुण होने चाहिए। प्रभुपाद हर एक गुण के लिए तात्पर्य में कुछ ना कुछ लिखते हैं कि कैसे भक्त के ये गुण होने चाहिए। तो पहला गुण वो देते हैं कि उसे सभी जीवों का हितैषी होना चाहिए, सभी जीवों का। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एक भक्त जो होता है वो शरीर को नहीं देखता, वो हर शरीर में स्थित आत्मा को देखता, भगवान को देखता। जैसे हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, तो जब एक भक्त देखता है तो उसकी क्या दृष्टि होती है? वो शरीर नहीं देखता, वो रंग नहीं देखता, वो देश नहीं देखता, वो जाति नहीं देखता, वो क्या देखता है? आत्मा, कि भगवान का अंश है। भले किसी भी अवस्था में हो, पशु योनि में ही क्यों ना हो, है तो भगवान का अंश। इसीलिए भगवद गीता के 5वें अध्याय में बताया गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो कौन समदर्शी हो सकता है? हर व्यक्ति समदर्शी नहीं हो सकता। समदर्शी वो व्यक्ति हो सकता है जो भगवान की भक्ति में लगा है, क्योंकि वो शरीर नहीं देखता, वो आत्मा को देखता, इसलिए समदर्शी है। हस्तिनी, गाय, हाथी, कुत्ता, सबको समान देख रहा। ब्राह्मण, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च। तो क्यों देख पाता है वो? क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो आत्मा को देख रही है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए, प्रभुपाद देखते थे वहां पर लोग नशे में हैं, सोच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सड़कों पर वो देखते लड़के युवकों को, युवतियों को, तो प्रभुपाद की आंखों में आंसू आया करते। प्रभुपाद ये नहीं सोचते थे कि अरे ये लोग, ये अमेरिका वाले सब ऐसे ही हैं, नहीं, प्रभुपाद हर एक जीव को देख रहे थे, और वो देखकर एक सोचते थे कि कितना कष्ट में है ये जीव, लेकिन अपने आप को आनंद में मान रहा, इसीलिए दुख होता था उनको। तो ये भक्त के लक्षण है कि वो सबको समान देखता है। प्रभुपाद ने किसी को भेद नहीं किया ज्ञान देने में, सारे जगत में बांटा, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, यूरोप, जहां गए वहां बांटा, कोई भेद नहीं किया कि अरे इन लोगों को नहीं देना है, इनको सिखाना है, नहीं, जो जिसने ज्ञान लेना चाहा प्रभुपाद ने उनको ज्ञान दिया। तो इसीलिए पहला लक्षण भक्त का है कि वो सबको समान देखता है। दूसरा लक्षण, क्योंकि वो सबको समान देखता है उसका कोई शत्रु नहीं होता। भगवान कपिल कहते हैं कि भक्त का, मेरे भक्त का पहला लक्षण है वो समान देखता है, दूसरा लक्षण कोई शत्रु नहीं होता उसका, अर्थात वो किसी को शत्रु नहीं मानता। क्योंकि शत्रु और मित्रता, शत्रुता और मित्रता इस जगत में इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति में मुझे मदद कर रहा है तो वो मेरा मित्र है। अगर कोई व्यक्ति मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बन रहा है, मुझे चेतावनी दे रहा है कि देखो तुम गलत कर रहे हो, ये मत करो, वो मत करो, शत्रु है मेरा। बस यही इस जगत की मित्रता और शत्रुता की परिभाषा है। हम मित्र बनाते हैं इंद्रिय तृप्ति के आधार पर, और शत्रुता करते हैं वो भी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर। अन्यथा किससे शत्रुता करनी है? भक्त के लिए किससे शत्रुता है अगर वो सबको समान देख रहा है, और दूसरा उसके लिए इंद्रिय तृप्ति है ही नहीं? तो वो जो व्यक्ति उसको बहुत, उसके लिए बहुत प्रशंसा करता है वो भी समान है, जो निंदा करता है वो भी समान है। क्योंकि निंदा करने वाला और प्रशंसा करने वाला एक भक्त को प्रभावित नहीं करता, भक्त की चेतना भगवान में स्थित है, इसलिए निंदा स्तुति ये समान है, तुल्य। चाहे कोई निंदा करे या स्तुति करे, भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए इन गुणों से ऐसा मत सोचिए कि ये भागवत में कहे गए हैं, कपिल भगवान कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं है। भगवान ने आपके लिए ही कहा है, अपने लिए नहीं कहा है। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप भक्त बनना चाहते हो तो इन गुणों को उत्पन्न करो, अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो इन गुणों को उत्पन्न करो। तो इसीलिए शत्रुता किसी से नहीं होनी चाहिए एक भक्त की। प्रभुपाद के जीवन में हम देखते हैं उनका कोई शत्रु नहीं था, किसी को उन्होंने शत्रु नहीं माना। ऐसे लोग जो विरोध भी कर रहे थे प्रभुपाद का, उनके लिए भी उन्होंने कभी शत्रुता नहीं दर्शाई। और इसका प्रमाण क्या है, जीवन के अंत में श्रील प्रभुपाद क्षमा याचना कर रहे थे सबसे। प्रभुपाद कह रहे थे कि मैंने प्रचार के लिए, प्रचार के माध्यम के लिए, बहुत बढ़ाने के लिए मैंने कई लोगों की निंदा कर दी, कई लोगों को कुछ कह दिया, मैंने कुछ शब्द इस्तेमाल कर दिए, तो वो प्रचार के लिए थे, क्षमा कीजिए। अगर प्रभुपाद ने शत्रुता की होती तो कभी क्षमा नहीं मांगते। शत्रुता नहीं थी, कोई हृदय में कोई शत्रु नहीं था उनका। तो ऐसा ये दूसरा लक्षण एक भक्त का है कि वो सबको समान देखता है और दूसरा उसका कोई शत्रु नहीं होता। लेकिन हालांकि उसका कोई शत्रु नहीं होता, लेकिन वो निकट का संबंध केवल भक्तों से बनाता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि हाँ शत्रुता नहीं करता, लेकिन रहता भक्तों के साथ, निकट का संबंध भक्तों से होता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं कि दूसरों को, दूसरे कोई बात कहते हैं तो कहता है यस सर यू आर राइट, हाँ आप बहुत ठीक हैं, बस बस इतना ही। अंतरंगा संबंध या बहुत निकट का संबंध वो केवल भक्तों से बनाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। क्यों, क्या दूसरों से द्वेष करता है, शत्रुता करता है? नहीं, लेकिन अंतरंगा निकट का संबंध भक्तों से, ताकि भक्ति में प्रगति हो सके। इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि अगर हमें संबंध स्थापित करने हैं, हमें मित्रता करनी है, निकट का संबंध भक्तों से होना चाहिए। ऐसा निकट का संबंध जहां अपने हृदय की बात भक्तों को बता सकें। हाँ भक्तों को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको आके अपने हृदय की बात बताए और अगले दिन जाकर आप उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दें, सारी दुनिया को पता चल जाए। नहीं, निकट का संबंध भक्तों में ऐसा होना चाहिए कि अपने हृदय की बात बताने के लिए उस व्यक्ति को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बाहर के जगत में संबंध ऐसे हैं कि बहुत निकट के संबंधों में भी व्यक्ति खुलकर बात नहीं कर पाता, कितना ही निकट का संबंध हो, वो हमेशा ये सोचता है ये बोलने से पहले क्या इसको प्रभाव होगा, मैं बोलूं या नहीं बोलूं, अरे नहीं इसको नहीं कहना चाहिए। हृदय खोलने के लिए कोई है ही नहीं लोगों के पास, खोखला जीवन है लोगों का। लेकिन भक्तों में ऐसा नहीं होना चाहिए, भक्तों के संबंध ऐसे होने चाहिए कि हृदय खोलकर बता सके कि ये हमारे हृदय में है, ये मेरे हृदय में दुख है, ये मेरे हृदय में सुख है, ये मेरे हृदय में गलत भावनाएं हैं, ये मेरे हृदय में अच्छी भावनाएं। कितना सुंदर वो संबंध होगा जहां हमें सोचना नहीं पड़ेगा अरे ये भक्त क्या सोचेगा, ठीक है इसको नहीं बताएंगे। तो भक्तों में ऐसा निकट का संबंध बहुत आवश्यक है जहां हृदय को खोलकर आपस में लोग बातचीत कर सकें। तो अंतरंगा निकट का संबंध केवल भक्तों से होता है, उसका बाहरी लोगों से एक औपचारिकता से मिलता है, कैसे हैं, ठीक हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है घर में सब चल रहा है, हाँ ठीक है। लेकिन जो निकट का संबंध वो भक्तों से होता है। तो ये तीसरा गुण है उसका। चौथा गुण यहां भगवान कपिल कहते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। हर भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करता है। और प्रभुपाद समझाते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अर्थात ये नहीं कि जो केवल आश्रम में ब्रह्मचारी रहते हैं मैथुन सुख से अलग रहते हैं, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो विवाहित भी हैं वो केवल अपनी पत्नी से संतुष्ट रहें, ये उनके लिए ब्रह्मचर्य का व्रत है। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो लोग अगर केवल अपनी पत्नी से संतुष्ट रहें तो ये उनके लिए ब्रह्मचर्य का व्रत है। लेकिन प्रभुपाद आगे और एक बात लिखते हैं, लेकिन विवाह की आवश्यकता ही क्या है, अच्छा है व्यक्ति अगर बिना उस सुख के रह सके, लेकिन अगर नहीं तो ठीक है, विवाह करना चाहिए, अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, बस। तो इसीलिए हर भक्त को ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है, हर भक्त को, चाहे वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इंद्रियां वश में आती हैं और उन इंद्रियों की शक्ति को हम भगवान की ओर मोड़ सकते हैं। अन्यथा व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो उसकी सारी शक्ति, उसके सारे विचार वो किस में जाते हैं? भोग करने में। हर समय उसकी चिंता यही होती है कि मैं कब भोग कर सकूं। लेकिन जो भक्त है उसकी चिंता क्या होती है? मैं कैसे भक्ति कर सकूं, कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो इसीलिए एक भक्त को, हर भक्त को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पांचवा गुण वो देते हैं, मौन। हमें मौन रहना चाहिए। मौन मतलब फिंगर ऑन योर लिप्स, मुंह बंद रखना चाहिए। तो हर भक्त को मौन धारण करना चाहिए। और मौन क्या है? मौन धारण करना मतलब चुप रहना नहीं, मौन धारण करना मतलब सतत कृष्ण कथा ही कहना। सच्चा मौन ये है कि जहां हम केवल कृष्ण कथा कहें। प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण कथा कहने के लिए भक्त को बड़ा उत्साही होना चाहिए, 24 घंटे उसको कृष्ण कथा कहनी चाहिए, यह सच्चा मौन है। एक बार श्रील प्रभुपाद भक्तों के साथ, उनके अनुयायियों के साथ कुरुक्षेत्र में गए थे, जहां जिस समय कोई मेला लगा था, तो वहां पर प्रचार के लिए गए थे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक मौनी बाबा है, मौनी बाबा बैठे हैं और लोग बड़ा उनका आदर सम्मान कर रहे हैं कि इन्होंने 10 साल से बोला नहीं है, 15 साल से बोला नहीं है, मौनी बाबा हैं, बात नहीं करते हैं, स्लेट पर लिख कर देते हैं, है ना, कई ऐसे लोग होते हैं। तो प्रभुपाद को ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। प्रभुपाद ने कहा क्या लाभ है, भगवान ने दी है ना शक्ति बोलने की, तो बोलो भगवान के विषय में, मौन रह के क्या लाभ है, अगर कोई 10 साल से नहीं बोल रहा, 15 साल से नहीं बोल रहा, क्या लाभ है, अरे बोलो भगवान के विषय में। तो सच्चा मौन ये है कि हम भारी चीजों को त्याग कर, भौतिक चीजों के विषयों को त्याग कर, हम भगवान के विषय में बोलें, ये सच्चा मौन है। और हर भक्त को ऐसा मौन धारण करना चाहिए, चेतना शुद्ध हो जाएगी, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। क्यों? सदैव कृष्ण का स्मरण, जिह्वा पर सदैव कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सच्चा मौन है। तो एक भक्त को मौन धारण करना चाहिए। और अगला गुण, छठा गुण वो बताते हैं कि जितने भी अपने कर्तव्य हैं उनके फल भगवान को अर्पण कर देने चाहिए। भक्त अर्पण कर देता है, कार्य करता है, लेकिन कार्यों के फलों से आसक्त नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोत्स्व कर्मणि। काम कैसे करता है? सब भगवान को अर्पण करते हैं, फलों से कोई आसक्त नहीं है, वो कोई उसको आसक्ति नहीं, सारे फल भगवान को अर्पण कर देता, भगवान के लिए कार्य करता। एक भक्त को तो कार्य ही भगवान के लिए करने चाहिए। तो इस तरह से जो भी अपने कार्य हैं वो भगवान को वो समर्पित कर देता है, अर्थात अपने सारे कार्यों को कृष्ण से जोड़ता, कार्य त्यागता नहीं है, केवल कार्यों को कृष्ण से जोड़ देता। अगर कोई घर में है, परिवार में है, परिवार का ध्यान कर रहा है, कोई अन्य कार्य कर रहा है, जोड़ देता बस कृष्ण से, सब कुछ कृष्ण को समर्पित। और इसका लाभ क्या होता है? जब व्यक्ति सब कुछ भगवान को समर्पित करता अपने कर्तव्य, तो वो आसक्ति से परे जाकर अंततः भगवान के लिए जीना प्रारंभ करता है, और ये जीवन की पूर्णता है। जो व्यक्ति केवल भगवान के लिए जीता है, उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, उससे बड़ा वैराग्य और क्या हो सकता है, उससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है? कि उसका अस्तित्व ही श्री कृष्ण के लिए है, वो जी रहा है केवल कृष्ण के लिए। अगर कृष्ण चाहेंगे तो मर जाएगा, जैसे भीष्म देव, वो रहे बने रहे दुर्योधन की तरफ बने रहे, अधर्म का साथ देते रहे केवल कृष्ण की इच्छा के लिए। लेकिन जब कृष्ण की इच्छा हुई, बहुत हो गया, अब जाओ बाणों की शैया पर तैयार, खुद ही बता दिया, ठीक है कल मुझे ऐसे ऐसे मार देना, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, तैयार। ये भक्त है, तो अपने सारे कर्म अपना जीवन भगवान को समर्पित करने के लिए तैयार रहता है। आगे लक्षण बताते हैं, सातवां लक्षण कि वो जो भी कमाता है उससे संतुष्ट रहता है। जो भी भगवान की योजना से हमें मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए। उपदेशामृत में भी बताया गया है कि प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है, किसी भौतिक चीज को पाने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना चाहिए। हाँ, जितना आवश्यक है, प्रभुपाद लिखते हैं कि अपने शरीर को बनाए रखने के लिए जितना आवश्यक हमें धन कमाना इत्यादि है, बस उतना कमाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो धन कमाने में लग जाएंगे, समय नहीं होगा भगवान का नाम लेने के लिए, भक्ति करने के लिए समय नहीं होगा, फिर वो भक्त कैसा। तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना, जो भगवान की योजना से आ जाए ठीक है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार हमें एक भक्त बता रहे थे उनका अनुभव, कि वो एक समय किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाने वाले थे, घर से निकलने वाले थे, कोई बाहर की कंपनी आई हुई थी, उनसे उनको बिजनेस का कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेना था, और वो लोग बड़े पक्के हैं समय के, तो ये 5-10 मिनट पहले ही पहुंचने वाले थे, बस निकलने वाले थे कि एक भक्त उनके घर आ गए। अचानक, कोई सूचना नहीं थी, कुछ नहीं थी, क्योंकि वो भक्त उस क्षेत्र में वहां आए थे, तो उनके घर भी चले गए कि चलो उनसे मिल लेते हैं। तो अब जब वो आए, अब इस व्यक्ति के लिए आप सोचिए, अभी घर से निकलने वाले हैं बड़े महत्वपूर्ण बिजनेस के लिए, वहां पर बाहर से विदेश से लोग आकर इंतजार कर रहे हैं, और इनको समय पर जाना है ताकि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले या जो भी हो, और अब अचानक भक्त आ जाते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे तो क्या करेंगे? अब प्रभु जी ठीक है, या तो आप बैठिए, नहीं तो मैं अभी समय नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है जो भी है, वो रुक गए, उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन भक्त को भी नहीं बताया कि मुझे जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। अब वो भक्त बैठे, उनको क्या पता, जो भक्त आए थे वो आराम से बात कर रहे हैं, और ये भी बात करते रहे, बड़े वरिष्ठ भक्त जो आए थे तो ये भी बात करते रहे, आधा घंटा निकल गया, पौना घंटा निकल गया, उधर टाइम हो रहा है, या कोई चिंता नहीं। तो उसके बाद जब काफी समय बाद फिर वो जब चले गए, तब ये गए, तो जब ये पहुंचे वहां पर बहुत देर हुई थी, तो वो जो विदेश के लोग थे उन्होंने उनसे कहा कि भाई आपने इतने कष्ट आए, इतने देर से क्यों आए? तो उन्होंने कहा मेरे घर पे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आए थे, मैं उनके साथ में था, आपको अभी बात करनी है तो कीजिए, नहीं तो मैं जाता हूं। तो उन्होंने बात भी किया, और वो बता रहे कि उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, जबकि और लोग जो समय पर आए हुए थे उनको नहीं मिला। तो बोले थे मैंने कोई चिंता नहीं की, जाता है तो जाए, भक्त आए हैं, अरे भक्त कब आते हैं भक्त घर पे, और वो भी इतने वरिष्ठ भक्त थे, तो उन्होंने छोड़ दिया सर। तो देखिए ये उदाहरण है कि जो भगवान की योजना से आना, उनको पता था अगर आना है तो आएगा, और आया, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको आया, तो भगवान की योजना से आना है तो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा। अब भक्त आए हैं तो उन्होंने पहले उनकी सेवा की। हम निश्चित कह सकते हैं कि आप में से कुछ लोग अगर होंगे अभी सोच रहे होंगे, अरे अरे कितना गलत किया, मैं होता तो चला जाता था, निकल जाता, है ना? और सही है, हमारी भक्ति भी उतनी नहीं, तो हम लोग चले जाते कि ठीक है भाई मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, आप प्रभु जी आप गलत समय पर आ गए, नहीं तो आप बैठिए घर में और लोग हैं, आपको प्रसाद वसाद देंगे, अभी हम जा रहे हैं, लेट हो रहा। तो देखिए ये बात, तो बहुत ज्यादा हमें प्रयास नहीं करना है, जो आना है वो वैसे भी आएगा। तो जो भी मिले भगवान की योजना से उससे संतुष्ट होना चाहिए। आठवां गुण है मित भूख, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कपिल भगवान। कपिल मित भूख मतलब, मित मतलब और थोड़ा, भूख याने भूख लगना। तो एक भक्त है वो केवल उतना ही खाता है जितना शरीर को चलाने के लिए चाहिए। इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, हम लोग आगे आगे का विषय लेते हैं और अगला, ये ठीक नहीं है चर्चा का विषय, क्योंकि हम भी बहुत खाते हैं, अब कैसे हम चर्चा कर सकते हैं इस पर। तो एक भक्त, खैर फिर भी बताना तो जरूरी है, भगवान कपिल ने बताया है। तो एक भक्त उतना ही खाता है जितना शरीर को चलाने के लिए चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। खाने में ही रुचि, खाने में आ सकती, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, गुलाब जामुन है रसमलाई है तो एक ही मिला, सेकंड सर्विस नहीं मिला। हाँ जितना जरूरी है उतना खाना चाहिए, ऐसा भी नहीं। भगवद गीता में भी भगवान यही कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार होना चाहिए। युक्त मतलब बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं, क्योंकि अगर बहुत कम खाएंगे हम लोग तपस्या के नाम पर और फिर बीमार होकर पड़ जाएंगे तो दूसरे को आपकी सेवा करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा खाएंगे तो इंद्रियों पर दबाव आएगा। उपदेशामृत में प्रभुपाद लिखते हैं कि जिह्वा को अगर जिस व्यक्ति ने वश में कर लिया, हम लोग रोज गाते हैं ना, तार मध्य जिह्वा अति जड़ इंद्रिय ताहे काल जीवे फेले विषय सागरे तार मध्य जिह्वा अति। सारी इंद्रियों में सबसे ज्यादा खतरनाक है जिह्वा, क्यों? उसके लिए तो इतना बड़ा किचन चलता है। अगर किसी को जिह्वा पे, समझ लीजिए आप सब लोग जिह्वा पे कंट्रोल कर लें तो जो भी बनेगा वो खा लेंगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जिह्वा ही है, इसीलिए इतने मसाले हैं, इतनी चीजें हैं, इतने डिशेस हैं, बुक्स प्रिंट हो रही हैं कि क्या क्या बनाना चाहिए। माता जी लोग दिन भर किचन में रहते हैं बस इसीलिए, तार मध्य जिह्वा अति। हाँ भगवान के लिए अच्छा अच्छा बनाना चाहिए निश्चित, लेकिन हम लोग बनाने के समय ये नहीं सोचते कि भगवान के लिए बना रहे हैं, है ना? हम लोग ये सोचते हैं कि अपने लिए बन रहा है, भगवान को भी रास्ते में चलते चलते ऑफर होते हुए आ जाता, बस इतना ही है, बनता तो हमारे लिए है। बहुत दिन हो गए प्रभु जी ये नहीं बनाया, अच्छा ठीक है आज ये बनाएंगे। तो भाव ये है कि अपने लिए बन रहा है। तो एक एक व्यक्ति को, तो जो उपदेशामृत में प्रभुपाद कहते हैं, अगर जो जिह्वा को वश में कर लेता है, तो जिह्वा क्या होता है, अगर जिह्वा वश में नहीं, बहुत खाता है व्यक्ति, और बहुत खाता है तो उसका जो उदर है उस पर दबाव आता है और फिर आगे भी उसको बड़ी तकलीफें होती हैं। वो अपनी इच्छाओं को वश में नहीं कर पाता, काम वासना को वश में नहीं कर पाता। तो इसलिए बहुत आवश्यक है जिह्वा को वश में करना। तो जिह्वा को वश में करने के दो उपाय हैं, एक सतत कृष्ण का नाम लेना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और दूसरा केवल कृष्ण प्रसाद खाना, और साथ ही साथ उपवास करना। जब एकादशी हो, अन्य दिवस हो, जैसे अभी गौर पूर्णिमा आ रही है, बहुत कष्ट होता है, शाम तक उपवास करना होता है। भक्त कहते प्रभु जी हमसे नहीं होता, आप कुछ भी कह लो, कितना ही बड़ा प्रवचन दे लो, हमसे नहीं होता, हम तो खाने पीने वाले नहीं। प्रभुपाद लिखते करना चाहिए इन सब पे, तभी तो कंट्रोल में आएगी। तो इसीलिए मित भूख मतलब जितना आवश्यक है उतना खाएंगे, बाकी बहुत ज्यादा खाने पीने में। इसीलिए एकादशी के दिन भक्तों को उपवास करने के लिए कहा जाता है कि 15 दिन तो कंटिन्यूस खा रहे, एक दिन तो थोड़ा आराम करें, भगवान का नाम ज्यादा लें, तो मित भूख होता है। अगला गुण वो देते हैं कि वो मुनि होता है। मुनि, मुनि अर्थात जो मनन करे, जो विचारवान हो। प्रभुपाद लिखते हैं कि कैसे विचार होने चाहिए हमारे। मुनि कौन है? मुनि वो है जो सदैव इस चिंता में रहता है कि कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे हो। प्रभुपाद लिखते हैं वो मुनि है, बस उसको मुनि कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके विचार क्या हैं? कृष्ण की सेवा के लिए, कैसे मैं प्रचार को बढ़ा सकता हूं, कैसे मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूं। वो सच्चा मुनि है। ये मुनि नहीं है कि जो चिंतन करे कि कैसे मैं जीवन जी सकता हूं, कहां जाकर तपस्या करूं ताकि लोग आकर बहुत सारा धन दें। ये मुनि नहीं। मुनि का विचार कृष्ण भावनामृत को बढ़ाना है। कैसे हम कृष्ण भावनामृत को बढ़ा सकते हैं, तो उसको मुनि कहते हैं। फिर दसवां लक्षण वो देते हैं कि भक्त हमेशा एकांत स्थान में रहता है, एकांत में, अकेले। ये भक्त का लक्षण है। इसको भगवद्गीता में भी भगवान ने कहा है। जब भगवान भगवद्गीता के 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षण देते हैं तो उनमें से एक लक्षण ये देते हैं कि उसको अकेले रहना चाहिए, एकांत में, एकांत स्थान में जहां कोई नहीं। तो भक्त एकांत में रहता है। प्रभुपाद लिखते भक्त वहां नहीं रहता जब बहुत सारे लोग हैं, अर्थात बहुत सारे भौतिकवादी लोग हैं, वहां भक्त नहीं रहता। लेकिन जहां भक्त हैं, चाहे हजारों भक्त हों, उसको वहां रहना चाहिए, वो उसके लिए एकांत स्थान है। तो एकांत स्थान को गलत मत समझिए। एकांत स्थान का अर्थ ये नहीं है कि कहीं अकेले में जाकर हिमालय में, अभी जैसे यहां पर पर्वत है कहीं उसमें बीच में जाकर हम लोग रहेंगे एकांत में, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे भगवान के नाम का जप। नहीं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इस पर्वत पे भी ऊपर जाकर बैठकर भगवान का नाम करने लगेंगे तो वहां पर भी मन में वही विचार आएंगे जो यहां पर आ रहे हैं, और जल्दी आप नीचे आ जाओगे और फिर बड़ी तीव्रता से नीचे जाओगे। इसीलिए अच्छा है भक्तों के संग में रहें। क्यों वो हमेशा भक्तों के संग में रहता है, क्यों साधारण लोगों के संग में नहीं रहता भक्त? क्योंकि भक्त हमारे लिए सुरक्षा है। जैसे कोई घर बनाता है तो एक बाउंड्री वॉल बनाता है या फेंसिंग करता है खेत की, कि प्राणी आकर उसको खा ना जाए। वो खेत लगा रहा है, खेत में कुछ उगा रहा है, कुछ फूल उगा रहा है, कुछ फल उगा रहा है, खुला छोड़ देगा तो कोई भी आएगा प्राणी खाकर चला जाएगा, तहस नहस करके चला जाएगा। तो इसके लिए एक सुरक्षा बनाई जाती है, या तो फेंसिंग करते हैं या बाउंड्री वॉल होती है, जो भी, ताकि कोई प्राणी आ नहीं जाए। तो भक्त हमारे लिए वो सुरक्षा है, ताकि कोई बाहर के प्राणी, अर्थात ये जो भौतिकवादी लोग हैं, वो आकर हमारे ऊपर, हमारी भक्ति की, जो हम लोग छोटे छोटे अभी बीज डाले हैं, अभी जरा जरा से पौधे आए हैं, तो वो आकर उसको नाश नहीं कर दें। और ये सच है, ज्यादा भौतिकवादी लोगों के साथ रहकर भक्ति बहुत जल्दी नाश होती। इसीलिए उपदेशामृत में भी रूप गोस्वामी ने कहा है ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो भौतिकवादी हैं। दो श्लोकों में उन्होंने इनको बार बार मना किया है। आप बता सकते कौन से श्लोक में है? हाँ, जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति, और संगत्यागात सतो वृत्ते। बहुत अच्छे। तो संगत्यागात, तो दोनों श्लोकों में वो यही कहते हैं। एक तरफ कहते हैं जनसंग नहीं करना चाहिए, जनसंग करने से भक्ति का नाश होता है, और दूसरी तरफ ऐसे संग को त्यागोगे तभी भक्ति प्रसिद्धति, तब आपकी भक्ति पूर्ण होगी। तो इसीलिए भक्त को अकेले रहना चाहिए। अकेले मतलब केवल भक्तों के संग में। उसको देखना चाहिए जितना संभव हो सके, हाँ काम के लिए जाना है बस जाकर वापस आ जाए, तो भक्त के संग में उसको रहना चाहिए, धाम में रहना चाहिए, धाम में साथ में जाना चाहिए, तो इससे भक्ति बढ़ती है। तो धाम में रहना ये एकांतवास है, भक्तों के संग में रहना ये एकांतवास है, भौतिकवादियों के संग में रहना ये केवल पतन का कारण है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी हमारी श्रद्धा भी बहुत कोमल है। ऐसा मत सोचिए कि हम 10 साल से 20 साल से 50 साल से भी अगर कोई भक्ति कर रहा हो, 50 साल हमारे आंदोलन को हो गए इस कौन को शुरू हुए, अगर कोई बहुत समय से भी भक्ति कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसकी श्रद्धा बड़ी मजबूत हो गई है अब वो कहीं भी जाएगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, भक्तों का संरक्षण चाहिए हर समय हर क्षण। भक्त अगर झगड़ा भी करना है तो भक्तों के साथ कीजिए, वैसे नहीं करना चाहिए। कल को आप लोग सब पता चला बाहर आए, क्या हो गया सब झगड़ा कर रहे हैं, बोले कल ही आपने बोला तो हम आपके आदेश का पालन हो रहा है, सब झगड़ा कर रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भी करना है भक्तों के संग में कीजिए, अच्छा है बाहर वालों के साथ संग ना करें। तो इसीलिए भक्तों के संग में ये एकांत असली एकांतवास है कि जहां हम भक्तों के संग में रहते हैं। आगे बहुत सारे और गुण हैं, समय काफी हुआ है तो कल इस अध्याय को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण गुण थे उन पर एक एक शब्द एक एक लाइन बोलने में ही इतना समय चला गया। तो कल इसी अध्याय पर और आगे जो चर्चा होगी, आगे भी अध्याय में गुणों को देने के बाद भक्ति की दुर्लभता और फिर कैसे भगवान कपिल तीव्र भक्ति का वर्णन करते हैं, इसको कल वर्णन करें।